नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। सेना भर्ती कार्यालय दानापुर ने 10 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को किया स्थगित। और तेज पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 116वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। मुख्य प्रसारण के तुरंत बाद मैथिली भाषा में इसका प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से किया जाएगा। इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि 8 बजे से भी सुना जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महाराष्ट्र, झारखंड विधानसभा और देश के अन्य हिस्सों में हुए उपचुनाव में पार्टी की जीत सुशासन और विकास का जीत है। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव परिणाम नकारात्मक राजनीति की हार है। श्री मोदी ने कहा कि कई राज्यों में हुए उपचुनावों में भी लोगों ने भाजपा के प्रति भरोसा दिखाया है। उन्होंने कहा कि यह जीत दिखाती है कि लोग केवल विकास चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस का ध्यान केवल और केवल परिवार पर है और नागरिकों के बजाय परिवार को प्राथमिकता देने वाली पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा है।
संविधान में वक्त कानून का कोई स्थान ही नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने पुष्टिकरण के लिए वक्त बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। इसलिए किया गया ताकि कांग्रेस के परिवार का वोट बैंक बढ़ सके। सच्ची पंथ निरपेक्षता को कांग्रेस ने एक तरह से मृत्यु दंड देने की कोशिश की है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश में केवल एक संविधान लागू होगा और यह संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान है। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगियों से कहा कि अब दुनिया की कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को वापस नहीं ला सकती। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की बैठक में श्री शाह ने कहा कि सरकार सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में सरकार सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 20 दिसंबर तक चलेगा। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर संसद की बैठक नहीं होगी। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा। 29 नवंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। पहले दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति भी सदन पटल पर रखी जाएगी। इसके अलावा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। 26 और 27 नवंबर को राजकीय विधेयक पेश होंगे। 28 नवंबर को चर्चा के बाद द्वितीय अनुपूरक बजट और विनियोग विधेयक पारित होगा। 29 नवंबर को अनुपूरक बजट पर सामान्य चर्चा होगी। पूरे सत्र के दौरान विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। सत्र के सुगम और सफल संचालन को लेकर विधि व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पटना के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। जिलाधिकारी डॉ चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। बिहार डाक सर्किल की ओर से पटना में 28 से 30 नवंबर तक डाक टिकट प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इसमें देश के डाक टिकट संग्राहक भी शामिल होंगे। बिहार के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि इस दौरान चार विभिन्न संगीत घरानों पर फोटो युक्त पोस्ट कार्ड और 5 ऋषि मुनियों पर विशेष आवरण का विमोचन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनकपुर की राजकुमारी माता सीता और वैशाली की आम्रपाली पर भी विशेष आवरण जारी किया जाएगा। डाक अध्यक्ष ने बताया कि मौर्यकालीन सिक्का और कला चाणक्य चंद्रगुप्त तथा कौटिल्य शास्त्र के साथ मंडन मिश्र और शंकराचार्य पर आवरण जारी की जाएगी। देश के पहले डाक टिकट को पटना जीपीओ से ही जारी किया गया था। बिहार के मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने कॉपर टिकट के प्रतिरूप का पटना प्रधान डाकघर परिसर में लोकार्पण किया। बिहार के पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि यह प्रतिरूप ताम्र टिकट की 250वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्थापित किया गया है। ताम्र टिकट का यह प्रयोग वर्ष 1774 में पहली बार पटना से ही शुरू हुआ था। उस समय यह अजीमावादी इकन्नी दुवन्नी के नाम से प्रचलित था। यह ऐतिहासिक पहल बिहार की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रदर्शित करने की दिशा में एक मील का पत्थर है।
बिहार ने कई चीजों को दिया है विश्व को, जिसमें यह एक बहुत बड़ी चीज है। फर्स्ट टाइम बहुत सारी चीजें हैं जो डाक विभाग ने पूरी दुनिया को दिया है। संदेश का जो इतिहास होता है वो सभ्यता का इतिहास होता है। हम लोग का संदेश वैसे वैसे ही प्रगति करता है जैसे जैसे हमारी सभ्यता प्रगति करती है। तो संदेश का या कम्युनिकेशन का या संचार के माध्यम का विकास एक महत्वपूर्ण सूचक है, द्योतक है, एक सिंबल है कि हमारा समाज कितना तेजी से, हमारी सभ्यता कितनी तेजी से आज बढ़ रही है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। सेना भर्ती कार्यालय दानापुर मुख्यालय ने 10 से 20 दिसंबर तक दानापुर के चांदमारी में आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को स्थगित कर दिया है। इस रैली में पटना, बक्सर, भोजपुर, सीवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के युवाओं की भर्ती की जानी थी। साथ ही बिहार और झारखंड की अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस के लिए शॉर्ट लिस्ट की गई महिलाओं के लिए भी रैली का आयोजन होना था। सेना के एक अधिकारी के अनुसार भर्ती रैली की नई तिथि बाद में घोषित की जाएगी, जिसे joinindiaarmy.nic.in पर जारी किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत राज्य के 34 जिलों के 50 युवा दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया के नेतृत्व में कर्नाटक का भ्रमण करेंगे। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कामेश्वर नाथ सिंह ने बताया कि यह भारत को जानो, भारत को समझो और भारत का बनो की संकल्पना पर आधारित है। इसमें CUSB को बिहार का नोडल विश्वविद्यालय बनाया गया है।
इकतीस अक्टूबर को पड़ता है, 2015 में उसी दिन से इसकी शुरुआत हुई थी और उसी साल युवा संगम 01 आयोजित हुआ और इसमें हम सब एक उत्तर के लोग दक्षिण को, दक्षिण के लोग उत्तर को, हम पूरे देश के बारे में जाने, यह एक ऐसा लक्ष्य रखा गया है। भारत की विशालता, भारत की महानता, भारत की विविधता, भारत की सांस्कृतिक संपन्नता से सभी लोग अवगत हों, भारत को जानो, भारत को मानो, भारत को पहचानो, इस भाव भावना को लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना की गई है। उसके तहत भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय युवा संगम 05 आयोजित कर रहा है।
तेज पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश के 24 शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में कमी आने से लोगों को अब ठंड का एहसास हो रहा है। विभाग ने कल से राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना जताई है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सीवान जिले का जीरादेई प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कुहासे के कारण रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ा है। कई रेलगाड़ियां 18 घंटे तक की देरी से चल रही हैं। इसके साथ ही 6 विमान भी देरी से उड़े। राज्य में वायु प्रदूषण का प्रकोप जारी है। कटिहार शहर पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक 365 दर्ज किया गया। इसके साथ ही हाजीपुर का AQI 351, बक्सर का 318 और पटना का AQI 298 दर्ज किया गया। सिखों के नौवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। श्री गुरु तेग बहादुर के बलिदान को हर वर्ष शहीदी दिवस के रूप में याद किया जाता है। वर्ष 1675 में आज ही के दिन श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म, मानवीय मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। निर्वाचन आयोग आज राज्य भर में सभी मतदान केंद्रों पर संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विशेष शिविर का आयोजन कर रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि लोग अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं या संशोधन करा सकते हैं। यह अभियान 28 नवम्बर तक चलेगा। उन्होंने बताया कि लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और इसमें किसी तरह के बदलाव के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य भर में डेंगू के 77 मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें 25 मरीज पटना से हैं। वहीं पटना से चिकुनगुनिया के 2 नए मामलों की पुष्टि हुई है। समस्तीपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के पुरानी पोस्ट ऑफिस रोड स्थित एक आभूषण दुकान से अपराधियों ने लगभग 50 लाख रुपए मूल्य के जेवरात लूट लिए। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि दुकान में लगे CCTV कैमरे की मदद से अपराधियों की पहचान की जा रही है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने 2 राज्यों के विधानसभा और उपचुनाव की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने जनादेश शीर्षक से लिखा है, मुंबई में NDA, रांची में इंडिया और बिहार में NDA ने सभी 4 सीटें जीती। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, सत्ता और स्थिरता के साथ मतदाता, महाराष्ट्र में महायुति की महाविजय, बिहार में राजग ने जीती 4 सीट। दैनिक भास्कर ने आज IPL के लिए होने वाले मेगा ऑक्शन को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, कप्तान की तलाश में उतरेंगी 5 टीमें, श्रेयस पंत KL सबसे बड़े खिलाड़ी, नीलामी में 577 खिलाड़ी होंगे शामिल, इनमें 367 भारतीय और 210 हैं विदेशी। प्रभात खबर की सुर्खी है, अमेरिकी आयोग ने रिश्वत मामले में अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी के साथ उनके भतीजे सागर को किया तलब। आज अखबार की बड़ी खबर है, वायनाड से प्रियंका 4 लाख से अधिक मतों से जीती। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज होगी सर्वदलीय बैठक। कल से शुरू होगा बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र। सेना भर्ती कार्यालय दानापुर ने 10 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को किया स्थगित। और तेज पछुआ हवा के प्रभाव से राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड में तेजी से बढ़ोतरी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।